ആരാധ. कथाओं में अन्यत्व और पृथकत्व का अंतर बताया था, जिसमें प्रदेशों की भिन्नता होती है वो पृथक कहलाते हैं, और जिनमें प्रदेश एक होते हैं और भावादिक की भिन्नता होती है उनको अन्य अन्य कहते हैं। अब सत्ता गुण की बात चल रही है। मैंने कहा जितना भी द्रव्य सामान्य अधिकार होता है, जहां भी इसकी चर्चा होती है तो सबसे ज्यादा सत्ता गुण की चर्चा चलती है। सत्ता को चाहे अस्तित्व को, सामान्य गुणों में भी सबसे पहले उसी की बात आती है। और यही कहा जाता है कि जब तक किसी चीज का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो तो उसका विस्तार कैसे संभव है, क्योंकि ये है ही नहीं तो बांझ के बेटे की शादी का वर्णन जैसा मामला हो जाता है। पहले ये सिद्ध करो कि ऐसा कोई ये ईश्वर है जो जगत का करता है, तब फिर वो कैसे करता, क्या करता, वो सारी बातें होंगी। अथवा सर्वज्ञ परमात्मा कोई है तो फिर वो क्या जानता होगा, कैसे जानता होगा, ये जो सारी पर्यायों को जानता है और वो सब नक्की हुए बिना जान नहीं सकता, ये सब तो उसके आफ्टर इफेक्ट हैं। पहले सर्वज्ञता स्वीकार हो, है ना। हर एक व्यक्ति को इस लोक में दो बातें बहुत विचित्र हैं कि भविष्य के मामले में कि वो ये भी चाहता है या जानता है कि भविष्य नक्की है, और ये भी चाहता है कि वो नक्की ना हो। ये कैसे जाने कि वो मानता है कि भविष्य नक्की है, तो वो लोगों से भविष्य को पूछना चाहता है, जानना चाहता है, और वो जानने की जिज्ञासा इतनी अधिक है कि सारी दुनिया एक तरफ और भविष्य की बात को बताने वाला एक तरफ, वो सबसे बड़ा भगवान है। वो बता देवे भविष्य में कि तेरा ऐसा ऐसा होने वाला है। बिल्कुल साधारण से साधारण आदमी में कुछ भी नहीं हो और बिना किसी डिग्री के, बिना किसी उसके, और आदमी जरा सा बैठने लग जाएगा, देख बताना हाथ, जरा तेरी कुंडली बताना, जरा तेरे चेहरे से तो ऐसा लगता है कि तू बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कुछ भी बोल दे फिर देखो हम उसके पीछे कैसे लगते हैं। और वो सिर्फ इसीलिए बोलता है क्या, क्योंकि उसे अपनी दुकानदारी चलानी है तो उसको बहुत जल्दी जम जाता है मामला। किस कारण से ऐसा होता है, हम और आत्मा की, परमात्मा की, धर्म की जितनी बातें कर रहे हैं, सारी जिंदगी धर्म के क्षेत्र में लगा दी, अध्ययन करते, पढ़न करते हैं, तब भी हम उस बात को उतना आकर्षित नहीं कर पाते हैं, है ना। और बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं, वे भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो भविष्यवक्ता कोई भी बन जाता है, और जो बन जाता है उसकी चलने लगती है, और उसकी एक भी बात की प्रमाणिकता नहीं है, कोई उसके पास प्रमाणिकता का आधार नहीं है, फिर भी उसमें लोग शंका करते ही नहीं है। हैं? और अपना अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि नहीं नहीं वो तो गप्पे लगाता है, झूठ बोलता है, ऐसी निंदा भी करते रहते हैं और फिर उसी से अपना भविष्य पूछते भी रहते हैं, जानते भी रहते हैं। तो ये मनुष्य की वो जो ज्ञान स्वभाव की प्रकृति है ना, माने जो भविष्य जाना जा सकता है, ऐसा जो हमारा स्वभाव है, ये उसका ही प्रकटीकरण है। कैसे? अंदर से ये बात आती है कि जाना तो जा सकता है, और वो तो ऐसा थोड़ी जानना चाहता है कि पढ़ोगे तो पास होगे, वो तो निश्चित ही जानना चाहता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कितने नंबर आएंगे। यदि आप उसकी डिटेल में और जब बताओ तो वो आप तो पूछते ही जाओगे कि कितने परसेंट आएंगे, तो परसेंटेज बता दे, तो हिंदी में कितने आएंगे, अंग्रेजी में कितने आएंगे, संस्कृत में, बहुत डिटेल है आपके पास पूछने के लिए, है ना? और नक्की है ये भी मानता है। अब जब इस बात को सिद्धांत के रूप में सामने आती है तो उसे ये डर लगता है फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ज्योतिष को जितना बदनाम इसने किया, किसने? ये बदलने की भावना ने, उतना किसी ने नहीं किया। क्योंकि हर आदमी अकेला भविष्य जानना नहीं चाहता है, बल्कि उसके मन का नहीं हो तो वे उसे बदलना नहीं चाहता है। और यदि कोई ऐसा ज्योतिषी हो कि मैं तो सिर्फ जानता हूं, मैं बदल नहीं सकता, तो उसे कोई पैसा देने वाला नहीं है, जान तो लेगा उसे, है ना? वो तो बदलवाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इसलिए फिर वो कहता है ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये दान दो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, मुझे बताओ तो मैं एक पूजा पाठ करवा दूंगा तो उससे कुछ ये हो जाएगा, इस तरह के करके अपने आडंबर, तो उनके माध्यम से फिर वो पैसा वसूल करने की कोशिश करता है। अब जब भविष्य तो नक्की है, वो बदला तो जा नहीं सकता है, अब ये बात तो अपन लोगों को तो कम से कम नक्की हो गई ना, लेकिन वो जो बदलने की बात करता है उसके पास भी कोई आधार नहीं है, लेकिन उसके बिना उसकी दुकान नहीं चलती, धंधा नहीं चलता। मेरे से भी लोग कहते हैं आप ज्योतिष को मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे, ज्योतिष है ना, तो हम ज्योतिष को मानते हैं। ज्योतिष को एक ज्ञान का भेद है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो ज्ञान करता है उसका एक प्रकार है। देखो ज्योतिषी तो अपने एक देव होते हैं ना, सूर्य चंद्रमा वगैरह, और उन्हीं की वजह से इस विद्या का नाम भी ज्योतिष पड़ा है, क्योंकि अधिकांश ज्ञान उन्हीं के आधार पर किया जाता है, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, तारों की गति है। वो ये कहते हैं तेरा शनि इधर है, सूर्य इधर है, फलाना इधर है, उन्हीं उन्हीं की नामें बताते हैं ना, उनकी गति के हिसाब से ऐसा ऐसा असर होता है। अब वो गति तो ये बदलने में किसी कीमत पर समर्थ नहीं है, यदि उस गति से होता है तो वो उसे भी नहीं बदल सकता, और वो तो उसकी जो गति है, उदाहरण के लिए 12 राशि हैं, तो सारा विश्व 12 राशियों में बटा है। अब 6 अरब लोग हैं तो इसका मतलब हो गया कि एक राशि के 50 करोड़ लोग होंगे। तो जो जो तुम्हारा आता है ना अखबारों में राशिफल, वो 50 करोड़ का एक साथ है। अब उसकी सच्चाई का क्या, 50 करोड़ व्यक्ति का भाग्य एक साथ हो सकता है? 2 का नहीं होता, 2 का चेहरा, 2 के 2 की उंगली, 2 का ये नहीं मिलता है, तो 50 करोड़ का तो कैसे होगा? फिर भी जो भी अखबार पढ़ता है वो शायद ही एक आध व्यक्ति ऐसा हो कि वो अपना राशि फल न पढ़ता हो वो कुछ नहीं होता उसमें, वो जो ज्योतिषी लिखता है ना वो 12 तरह की चीजें लिख के रख लेता है और आंख मीच के देता रहता है, बस खत्म। इसका ऐसा होगा, इसका 2 बुराइयां लिख दी, 2 अच्छाइयां लिख दी और बस वैसा चलती नहीं है कि चलती रहती है गाड़ी। फिर भी हमारी जो भविष्य के जानने की जिज्ञासा है वो इतनी तीव्रतम है कि उनका हम अखबार वालों से कहते हो तुम बेकार की चीजों का प्रचार करते हो, ये राजफल क्यों देते हो, तुम मानते हो? यानी हम तो नहीं मानते। हर संपादक से जाके पूछना, वो यही कहेगा हम तो नहीं मानते। फिर देते क्यों हो? कि हम भी लोग पढ़ते। हर एक का ये है कि हम तो बाजार में जो माल बिकता है वो बेचते। हम नहीं मानते हैं फिर भी हम छापते हैं। हर एक छापता है और लाखों अखबार तो ये नाराजी भर छापते रहते हैं। तो ये जो जिज्ञासा है कि हमें भविष्य सुनिश्चित है, अब हमारे किरमत पर्याय वालों के हिसाब के लिए ये बहुत अच्छा लक्षण है, शुभ लक्षण है, क्योंकि लोगों को भविष्य सुनिश्चित है इसकी स्वीकृति पसंद है और वो जानना चाहते हैं। माने जगत की पसंदगी के विरुद्ध नहीं है। इसमें से जो एक डिफेक्ट है वो निकाल दो। ये भीलवाड़ा में एक अपने अजमेरा फैमिली है, मोक्षु फैमिली है, तो उनने उनका आयुर्वेद की दवाओं का बहुत बड़ा दवा वो है कारखाना, तो उनने जो अपने क्या आता है सोयाबीन का दूध, सोयाबीन की मिठाइयां, सोयाबीन की कई चीजें ऐसी बनाई, और इस अर्थ में कभी बहुत फायदेमंद है और ये दूध की कमी को पूरी करता है, और दूध के बारे में जो तरह तरह के भ्रम है तो उन्होंने उसका प्रचार किया कमाने के लिए नहीं, कि उस सोयाबीन का प्रचार करें। मैं काय के लिए बात करना चाहता था जो मैं समझा रहा था ना उसके लिए इसका उदाहरण दे रहा था, लेकिन अब मेरे दिमाग में से वो निकल गया है। नहीं, वो दूध वूध की कमी से मुझे कह लेना जाना मुझे तो वो उसकी वास्तविकता समझानी है। हाँ, वो अब आ गया ख्याल में कि वो दूध बना के आगे पिलाते थे लोगों को, लड्डू बनाते थे, करते थे, तो हम कहते भाई ये तो, वो कहते हुए सिखाते भी थे कि तुम कैसे दूध बनाना, कैसे ये बनाना। तो जो हम घरों में बना करके और दूध का काम में लेते थे तो वो दूध से कब्जियत हो जाती थी। कब्जियत समझते हैं, पेट में गड़बड़ होती थी, मना अनुकूल नहीं पड़ता था, तो उनसे कभी ये तो तकलीफ पैदा करता है। तो उनने एक बात बताई कि इसमें एक तत्व ऐसा है कि जिस तत्व को खाने से वो पेट खराब होता है, तो आपके दूध से क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम वो तत्व निकाल देते हैं। अब वो मशीनों से उनके पास ऐसा साधन है कि वो चीज वो निकाल दें। इस सब पदार्थों के साथ में यही है, उसमें कुछ फायदे की चीजें हैं, कुछ नुकसान की चीजें हैं, और जितनी ये दवाइयां बनाने वाले हैं बस उसमें से वो नुकसान वाली चीज निकाल देते हैं और अच्छाई वाली चीज रखते हैं। तो वो निकलने का साधन है ना, तो अपने जो ये क्रमर पर आएगी गोली है ना, इसमें भी एक तत्व तो ऐसा है कि जो इसकी लोकप्रियता को बढ़ाता है, और वो कौन सा है? भविष्य नक्की है ये सब मानते हैं। और दूसरा तत्व कौन सा है? कि बदल नहीं सकते, बदलने की बात इसे तो बदलना है, और वो किन्मत पर्याय की बात में वो बदलना वाली बात नहीं है, तो इसलिए फिर उसे पसंद नहीं आती है। अब उदाहरण सही बैठा क्या नहीं बैठा, मैं ठीक सोच रहा था? यदि जीवों के अंदर ऐसी जिज्ञासा नहीं होती भविष्य जानने की, तो किन्मत पर्याय की बात कोई सुनता ही नहीं, और यदि बदलने की सुविधा होती तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत बन जाता, सर्वमान्य सिद्धांत हो जाता। वो तो हो तो सकता नहीं है, लेकिन मैं बात बता रहा हूं कि उसमें एक तत्व ऐसा है और एक तत्व ऐसा है। तो जो मेरे से पूछते हैं कि आप ज्योतिष को मानते हैं कि नहीं, तो मैं ये कहता हूं कि ज्योतिष को मानता हूं, ज्योतिष ज्ञान तो सत्य है। अब ज्योतिषी कितना सत्य है और कितना झूठ है, ये मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता, समझिए ना, क्योंकि उसके अंदर फिर वो कमाने का भी भावना है ना, इसलिए वो बदल सकने की बात उसने जोड़ दी है कि मेरे पास इसके बदलने का भी उपाय है। अब बदलने का उपाय है तो इसका मतलब यह है कि फाइनल नक्की नहीं, ऐसा ही अर्थ हुआ ना, तो मैं थोड़ी से कोई भी बदल देगा, तो लौट फिर के वो नक्की नहीं है पे आ जाता है। और जब गले में ये मामला फंसता है, ये बड़े बड़े विद्वान सर्वज्ञता को सब मानते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तो कोर्स में सर्वज्ञता थी, आज भी है, तो न्याय प्रथमा में थी, न्याय मध्यमा में थी, न्याय तीस में थी। हर साल पेपर आता है, 100 वर्ष के पेपर उठा के देख लो, तीनों परीक्षाओं में हर साल सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि या विशेष सर्वज्ञ सिद्धि पे प्रश्न जरूर आता है, और ज्यादातर निबंध लिखो, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करो और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि करो, तो वो सर्वज्ञ सिद्धि पे बढ़िया मैटर संस्कृत भाषा में बना के तैयार कर लिया था, और लोग रट के तैयार कर लेते हैं और वो धड़ाधड़ जाते हैं, तो आंख मीच के लिखना ही है, वो पेपर आउट जैसा है, क्योंकि वो नहीं पूछो तो कहते कुछ रहा ही नहीं फिर पूछने को, इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था, यानी वो पढ़ाया जाता था, समझे ना, अब पढ़ते थे वो सब अध्यापक हमें पढ़ाते थे। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि भगवान सब नहीं जानते, हाँ सब जानते हैं, सर्वज्ञ अपने सर्व की सिद्धि करी। अब जब ये आया कि सब जानते हैं तो फिर नक्की होना चाहिए, और नक्की है तो हम बदल नहीं सकते हैं, यही हमारे कर्णानियों के साथ है, कर्णानियों वालों में ये डिफेक्ट निकल जाए तो सेंट परसेंट काम है, क्यों धर्म का कांटा है, उतनी जैसी सच्चाई तो अध्यात्म में भी नहीं है, लेकिन वो कर्म फलों से जो किया तो बिल्कुल निधत्ती और निकाचित, कर्म का नाम सुनते ही जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं निधत्ती निकाचित में घबरा क्यों रहे हो, कौन से कर्म है निधत्ती निकाचित मालूम, तीर्थंकर प्रकृति, अरे कि वह बदली नहीं जा सकती। हम तो समझते हैं कि कोई इतना खराब कर्म होगा कि जो हमको बहुत परेशान कर देगा तो उसे हम बदल नहीं सकते। समझ में आया ना, अरे बदल नहीं सकना ये हमारे लिए एक संकट है, तो कर्म वाले दीदी हां साहब हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, उद्वेलना हो सकती है, अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, ख्याल में आई ना, और सब अच्छा अच्छा वो होता है ना, वो बताओ ना क्या क्या हो सकता है, वो 10 करण है, क्यों उनसे संक्रमण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है और अपकर्षण हो सकता है, अच्छा 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 ठीक है, उन्हें इतना पता नहीं है कि उत्कर्षण और अपकर्षण सिर्फ स्थिति का होता है, समझ में आए ना, क्या क्या मैंने बोला स्थिति सात सात कितने थे न सात में नरक की आयु 33 सागर है, अब वह घट के 84,000 रुपए से रह जाएगी, तो इसका नाम हो गया अपकर्षम। समझे ना, माने घटना बढ़ना, तो वो अकेला स्थिति में होता है। अब ऐसे संक्रमण है और सब चीजें होंगी, मैं उन डिटेल में नहीं जाता हूं, नहीं मैं ही उसका हो जाऊंगा। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि उसके भरोसे जिंदा है करण फरसवी, कि है कोई बिल्कुल नहीं बदल सकते ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें भी बदलने का कोई रास्ता है, और वो पंडित जी बता देंगे कभी इस तरह से कर सकते। ये पता ही नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, ना किसी को दिखाई देता है कर्म। शास्त्र में लिखा है सो हमने पढ़ा है, और शास्त्र वो अनुमान से हम जान सकते हैं, तो अनुमान भी आगमाश्रित है। समझ रहे तुम, आगम में ही लिखा है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो इसे बोलते हैं व्याप्ति। वो व्याप्तियां जो हैं उनके आधार पर हम जानते हैं, आगम के आधार पर, तो आगमाश्रित अनुमान है। अब वो इतना बड़ा खुआ खड़ा हो गया कि बस खत्म, अब उसमें पक्की बात हो जाए कि बदल नहीं सकता, तो वहां भी वही धर्म संकट खड़ा है, पंडितों की पंडिता ही नहीं चलती है। फिर हम तुमको विधि बताते हैं, अब देखो सब बता दिया, इनको काल मंत्र पढ़ो, इससे चक विधान कराओ, तो फलाना दूध, ये बड़ी बड़ी बीमारियां थी ना पुराने जमाने में, कोढ़ सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती थी, क्योंकि कोढ़ियों को गांव में नहीं रहने देते थे, गांव के बाहर निकाल देते थे, आश्रम बना के वहीं डाल देते हैं, घर वाले घर में नहीं रहने देते हैं, छूत की बीमारी मानते थे, इसलिए वो बहुत बड़ा संकट मानते थे। तो ऐसे बड़े बड़े संकटों का कि कोई दो चार गोलियां चाहिए थी हर एक को, कि होए चाहे नहीं होए, लेकिन हम जिंदगी भर वो जपत रहे और इस आशा में लगे रहें कि हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, ऐसे ऐसे ही फिर मर जाए, बस खत्म, और क्या। समझे, ऐसे ही होता था, इसलिए उन्होंने ऐसी बीमारी का नाम लिया कि जो इस भ्रम में ठीक होती ही नहीं है। घबराना नहीं, पूरी बात यानी वो बहुत धीमी गति से बढ़ती है और बहुत धीमी गति से उसका इलाज भी होता है। दवाइयां तो बन गई हैं, आज आपके शरीर में कोढ़ का कीटाणु प्रवेश करे तो वो 40 बरस बाद आपको बाहर दिखेगा, कि जिससे आप समाज आपको बहिष्कृत करेगा, निकालेगा घर से बाहर का। 40 वर्ष तक तो आपके शरीर में रहता है, उस वक्त हम क्या कर लेते हैं, घर में रहता ना वो आराम से कि नहीं, उसका झूठा मूठा हम खाते पीते रहते कि नहीं, है? इतनी धीमी गति से अंदर से बढ़ता है, फिर दवाई ला चालू हो तो वो 40 वर्ष में धीरे धीरे ठीक होगा, ख्याल नहीं ना, और तब तक तुम मर जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि वो मरने तक ठीक होता ही नहीं, ठीक होता नहीं का मतलब समझे ना कि उसका इलाज नहीं है। अब ऐसी बीमारी के लिए हमने सचक विधान दाव पे लगा दिया, क्या एक भी सिद्ध नहीं कर सकते, क्यों बोलो, ये एक भी हम कर दे में कोई ऐसा होता नहीं है? जुकाम वुकाम तो 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, चाहे जो गोली दे दो, कुछ नहीं कह दो, दूध पिला दो, पानी पिला दो, गर्म पानी पी लेना, इतनी चुटकी भर नमक डाल के पी लेना, ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन तो लगेंगे, तो ऐसी बीमारी का बताते तो काम चलता रहता ना, तो ऐसी बीमारी पकड़ी। तो ये जो मेरे कहने का मतलब है कि वस्तु का स्वरूप बहुत निर्द्वंदता से समझा जाता है। इस सत्ता नाम का जो गुण है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले है सिद्ध हो तो कैसा है, यानी पहले जाना जा सकता है। कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि वो सब भूत भविष्य वर्तमान को जान सकता है, तो वो क्या जानता और क्या नहीं जानता सिद्ध हो। अपन यहां से किरमत बजाय की तरफ चले गए थे, है ना। तो उस अस्तित्व नाम का जो गुण है, अब कहते हैं है तो एक गुण। अब इसका दो तरह से विस्तार होता है, ध्यान से सुनना। एक तो महासत्ता की तरह और एक अवान्तर सत्ता का, कि हम भी हैं और तुम भी हैं, तो हमारी तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी है, कि है वाली रिश्तेदारी है। क्यों? दोनों हैं। जैसे रेल के डब्बे में बैठे हुए दो यात्री कौन सी रिश्तेदारी में है, कि दोनों यात्री हैं, इसलिए दोनों के हित समान हैं। गाड़ी लेट होगी तो दोनों की होगी, और जल्दी पहुंचेगी तो दोनों के लिए पहुंचेगी, है ना। फिर फर्स्ट क्लास वाले उनके हित समान है सेकंड क्लास वालों के, यानी कई जातियां बन जाती हैं ना। तो एक तो ये सत्य कि तुम भी हो और हम भी हैं, और ये महासत्ता वहां तक जाती है, कहां इस संग्रह न यहां तक ले जाता है, सारी दुनिया जिसमें समेटकर आ जाती है। अब उसको अभी छुट्टी रखो थोड़ी। अब यहां ये कह रहे कि ये सत्ता नाम का जो गुण है हर एक आदमी में, सत्ता माने हमारी सत्ता है, वैसी सत्ता मत रहना, जो सत्ता नाम का गुण, अस्तित्व नाम का गुण, उसका नाम सत्ता। यह सत्ता का स्वरूप क्या है, कि स्वरूप ये है कि उसे तीन जगह हमने विस्तार दिया है, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। है सत्ता एक ही, द्रव्य की सत्ता अलग हो और गुण की सत्ता अलग हो और पर्याय की सत्ता अलग हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सत्ता दोनों में है, सत्ता नाम का गुण। इसलिए हम द्रव्य की तरफ से बात करें, गुण की तरफ से बात करें और पर्याय की तरफ से बात करें, तो हम द्रव्य सत अलग, गुण सत अलग और पर्याय सत अलग, ऐसा कह सकते हैं। सत्ता भी एक गुण ही है, लेकिन फिर भी अनंत गुण है, तो अनंत गुणों में भी सत्ता गुण का रूप है ना, गुरुदेव ने फरमाया, तो इससे सब गुण का अस्तित्व है। सब गुण में अस्तित्व गुण है ना, अस्तित्व गुण का रूप है। देखो अपने अंदर के जो भेद हैं उनमें अपने अस्तित्व गुण का रूप है, तुम्हारे गुण में हमारे अस्तित्व गुण का रूप नहीं है, तुम्हारे अस्तित्व गुण का है। तो ये अंतर्गत भेद है दादा, द्रव्य सत, गुण सत और विस्तार सत। सोनगढ़ जब अपने लोग बहुत कम जाते थे, कोई जाता ही नहीं था हिंदी प्रांत वाला, और गुरुदेव ने दो चार साल हुए होंगे कि जब वो वहां उन्होंने बना दिया था, अपना प्रवचन करते थे, रहते थे, 10-20 आदमी बैठे रहते थे। तो इधर आगरा के पास एक गांव है चावली कुरावली, ऐसे गांव है ना, जानते हो तुम लोग। तो उस कुरावली के एक ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था गुणधर लाल। वो गुणधर लाल ब्रह्मचारी बिल्कुल स्वामी जी की नकल करते थे, वैसे ही चदरा उड़ लेते थे, वैसे ही गोरे भूरे भी थे और ये थे, और फिर वो वहां जाके सीख साख के आते थे और गांव गांव में प्रवचन करते थे, ऐसी आंखें बंद कर करके। दादा उसकी बहुत नकल उतारते थे और हमारे मक्खनलाल जी गुरु जी थे जो कांजी स्वामी के कट्टर विरोधी थे, वे उसकी नकल दादा से करवाते थे। बोले रतन जी कैसे कैसे करता था, कैसा करते करते वो गुणधर लाल की एक भजन बोला करता था, वो कहे गुणधर उन्हें हंसधर ऐसा तप्त चिंतन की घड़ी है, ऐसा एक भजन बोलते थे बहुत अच्छा। तो उनने आगे अशोक नगर में सबसे पहले ये बात बताई थी, कब अब मैं बता रहा हूं, मैं आज से करीब 55-60 साल पहले है? ये होगी सन कब की रात होगी, 1960 की होगी। कि सत्ता तीन है, द्रव्य सत अलग है, गुण सत अलग है और पर्याय सत अलग है। गुरुदेव श्री का इस गाथा का प्रवचन सुन के आए थे ताजा ताजा है। है? तो सबको बहुत अटपटा लगा, बहुत नया लगा, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था। अभी तो मूल गाथा में है, लेकिन सब लोगों का इतना स्वाध्याय नहीं था ना, प्रवचन सार पढ़ भी लिया था तो उतनी गहराई से नहीं पढ़ा था कि जिस तरह से इस बारीकी में वे जा सके। इसलिए जब ये याद आती है, गाथा आती है, तो मुझे गुणधर लाल याद आते हैं। द्रव्य सत, सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय, इस प्रकार सत्ता गुण का विस्तार है। इनमें जो उसका अभाव अर्थात उस रूप होने का अभाव, वह तद अभाव है अर्थात अतद भाव है। देखो बहुत कठिन सा लगता है, लेकिन कठिन है नहीं। ये कहते हैं कि एक होता है अतद भाव और एक होता है वो अतद भाव रूप अभाव, और एक दूसरे का है अत्यंत भाव रूप अभाव है ना, वो दूसरा जो है जो पृथकता वाला, ये है अतद भाव। तो कहते तद, तद माने वह, और तद भाव माने वह इस रूप है, वह उस रूप है, यानी अपना अपने में ही, उसे तद्भाव बोलते हैं। मेरा भाव मेरे में ही है, इसका नाम है तद्भाव। और कहते हैं तद्भाव नहीं होना, उसका नाम हो गया तद का अभाव। क्या हुआ? तद का अभाव। अब तद के अभाव वाले आ को सबसे शुरू में ले आओ तो अतद भाव, समझ गए? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई का शब्द और बता सकते हो? बहुत चलता है अपने इसमें। तुम्हें क्या बोला है? अकारी, अकारी कारण शक्ति में तो ना कारी है ना कारण है, तो अकारी और अकारण एक ही आ है, लेकिन दो दो जगह निकलता है। और भी शब्द हैं मत में, जैसे अपना अनादि निधन, अनादि और अनिधन, और इसको दो में से दो आ है ना, दो का हम एक से काम चला लेते हैं और उसे सबसे शुरू में लगा लेते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा, कोई ध्यान रखता नहीं है, कि जब अनादि निधन लिखेंगे तो अनादि और निधन अलग नहीं लिख सकते। यदि अलग लिखोगे तो फिर वो नहीं लगेगा, समझ गए ना? फिर वो एक शब्द हो गया, समझे? एक शब्द हो जाएगा तो दो शब्द नहीं रह जाएंगे, वो तो दो आ नहीं निकलेंगे उसमें से, वो एक ही निकलेगा। अब वही उदाहरण दे रहे हैं, मोती की माला और हार को छोड़ेंगे नहीं, उनके पास है क्या? एक आध चीज हाथ लग गई तो उसे पकड़ लेते हैं। मंदिर में लोगों के हाथ में माला देखी होगी, महाराज तो कुछ माला रखते नहीं है, कहां रखेंगे? महाराज रखेंगे कहां? गले में थोड़ी डाल लेंगे। देखो जिस प्रकार मोतियों की माला हार के रूप में और धागों के रूप में और मोती के रूप में, इस प्रकार तीन प्रकार से विस्तारित की जाती है। मोतियों की माला, अब माला और हार में अंतर किया, इसमें खोजो इस अंतर को, क्या समझ में आया ना? अपन तो इसमें माला, माला भी कहते, माला डाल दी गले में, हार डाल दिया तो माला डालते हैं तो ही वो चीज डालते हैं, और हार कहते हैं तो ही डालते हैं, अपन तो पर्यायवाची समझते हैं ना। लेकिन कहते हैं ये तो तीन रूप में, माला हार और धागों के रूप में और मोती के रूप में, इस प्रकार तीन प्रकार से विस्तारित की जाती है। आगे अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। वो उसी प्रकार एक द्रव्य का सत्ता गुण, सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय, इस प्रकार तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। जिस प्रकार मोतियों की माला का सफेदी गुण जो उसमें जो सफेद है ना उसका तो नाम है गुण है, और सफेद हार ये द्रव्य हो गया है ना। सफेद हार को बोलते सफेद और गुण को बोलते सफेदी। सफेद गुण नहीं है, सफेद तो जिसमें सफेदी है ऐसी वस्तु माने द्रव्य, और सफेद धागे उसमें धागा भी सफेद ही डाला है, और सफेद मोती के रूप में। अब तीन चीजों में सफेद हार, सफेद धागे और सफेद मोती। तो माला के अलग से अलग सफेद हार क्या है, ठीक है, के रूप में तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। उसी प्रकार एक द्रव्य का सत्ता गुण सत्य द्रव्य और सतगुण। अब ये सतगुण है और ये सत्ता गुण, सत्ता गुण के तीन भेद हो गए और सतगुण उनके तीन में से एक है। जैसे कि अपने निश्चय नयों में आता है ना, एक देश शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है। तो और किसके भेद हैं ये, शुद्ध निश्चय नये के भेद हैं। फिर कौन कौन से, साक्षात वो तो मैंने तरकीब निकाली है, वहां तो वही लिखा था, साक्षात भी शास्त्र का ही है, लेकिन उसका नाम शुद्ध ही है, शुद्ध द्रव्यार्थक में है उसका नाम। अब एक मैन का नाम भी शुद्ध है, उसके तीन भेदों में से एक भेद का नाम भी शुद्ध है, वहां मैंने सब लिखा है, तुमने पढ़ा होगा ना गहराई से। तो उसको फिर मैंने साक्षात शुद्ध नय, इसका भी एक आध दो जगह प्रयोग देखा था मैंने, तो वो लगा लिख दिया कि जिससे वो पृथकता स्थापित हो जाए। यहां भी अभी पृथकता अपन को स्थापित नहीं हो पा रही ना, देखेंगे कैसे होती है। जिस प्रकार एक मोतियों की माला में जो सफेदी नामक गुण है वह हार नहीं है, धागा नहीं है और मोती नहीं है, मोतियों की माला में सफेदी नामक जो गुण है वो हार नहीं है, धागा नहीं है और मोती नहीं है। और जो हार धागा या मोती है वह सफेदी गुण नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे में जो उसका अभाव अर्थात उस रूप होने का अभाव वह तद अभाव लक्षण, तद अभाव है लक्षण जिसका, ऐसा अतद भाव है जो कि अन्यत्व का लक्षण है। ये कहते अन्य अन्य है तो उसमें जो अतद भाव होता है, ये इस रूप नहीं है, ये इस रूप नहीं है, बस इतना है उन्हीं प्रदेशों में। उसी प्रकार एक द्रव्य में जो सत्ता गुण है वह द्रव्य नहीं है और अन्य गुण नहीं है। देखो ये निकाला उनने, वो सत्ता गुण नहीं लिखा यहां पर, एक अन्य गुण नहीं है और पर्याय नहीं है, अंतर आया ना। अब अनंत गुण है ना, तो सत्ता गुण द्रव्य नहीं है, अन्य गुण नहीं है और पर्याय नहीं है। जो द्रव्य के साथ अन्य नहीं लगाया, पर्याय के साथ अन्य नहीं लगाया, तो गुण के साथ अन्य लगाया ना, क्योंकि सत्ता नाम के गुण को खड़ा करना है और फिर तीन चीजें और खड़ी करनी है, और उनमें एक का नाम गुण भी है, वही जो वो परेशानी हो जाती ना, एक का नाम गुण भी है। ऐसे में पुण्य पाप के मैं भी समझाता था कि करमचंद नाम के एक व्यक्ति था और उसके दो बेटे थे, एक का नाम था पुण्य और एक का नाम था पाप, ऐसा निकला गया था। वो दोनों ही कर्म है, तो बल्दी अपने दोनों करमचंद लिखे ना, कर्म ही आएगा ना, तो उनका गोत्र तो दोनों का एक ही हो गया ना, विसज्ञे भाई है ना, वो कर्म की ही जाति, कर्म के ही गोत्र के हैं, लेकिन वहां भी एक ऐसा ही था, क्या था मैं अभी भूल रहा हूं, फिर बताऊंगा कभी जब मौका आएगा जब, है ना। उसी प्रकार सत्ता गुण है, वह द्रव्य नहीं है, अन्य गुण नहीं है या पर्याय नहीं है, और जो द्रव्य है वो अन्य गुण पर्याय है, वह सत्ता गुण नहीं है। जो द्रव्य है अन्य गुण या पर्याय है, वे तीनों चीजें लेना है ना, वह सत्ता गुण नहीं है। सत्ता गुण में ये तीन नहीं है और इन तीनों में सत्ता गुण नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे में जो तदरूप होने का अभाव है, वह तद अभाव लक्षण अतद्भाव है, जो कि अन्यत्व का कारण है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में पहले तो उक्त उदाहरण के माध्यम से ही बात को स्पष्ट करते हैं, किंतु बाद में उसे सिद्ध परमात्मा पर भी घटित करके बताते हैं। ये इनकी खास स्टाइल है। इसकी वजह से कुछ लोग इसे ऐसा कहते हैं कि अमृतचंद्र की अपेक्षा जयसेन ज्यादा आध्यात्मिक हैं। ख्याल में है ना, कैसे ज्यादा हो गए कि इनने तो सब अकेला मोतीहार 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 ही हैं। ऐसा लगता है इनने कोई ये अपने ना मोती हैं संस इनने कुछ कर दे दिया है उनको हैं, और ये उनने आत्मा पर भी घटित किया, इसलिए वे आध्यात्मिक ज्यादा हैं, ऐसा कुछ लोगों को का कहना है। जैसे कि हम तत्वासूत्र में सात तत्वों को समझाते हैं ना, तो नाव का उदाहरण देके समझाते हैं, तो वो नाव नाव ही पे सब लोग नाव पे ही तत्व तो समझते रहते हैं। अपने अपनी बालबोध पाठमालाओं में ये क्लियर किया कि ये नाव पे समझाया है, अब इसे आत्मा पर भी घटित करो। वो जैसा नाचार्य की शैली है, वहीं से लिया, और कहां से लेंगे, डायरेक्ट नहीं लिया होगा तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे, कि अपने देख के हाँ ऐसा है तो अपने ऐसा, ऐसा नहीं। लेकिन वो जब उनकी जो शैली पढ़ी तो दिमाग में घुस गई, तो ऐसे आ गए कि भाई इस तरह समझाना चाहिए कि एक उदाहरण हम लौकिक दें तो एक आध्यात्मिक आत्मा के संबंधी देना चाहिए। अब वो भूल गए कहां से आई है कि जैसे नाचारी में है, दिमाग में से निकल गई और फिर वो अपनी किताब में आ गई। ऐसा आता, बहुत चीजें ऐसी आती हैं। आप कह दो ज्ञानी हमने देखी, आपने वहां से निकाली, वो उसे पता ही नहीं होता है। वो तो जब पढ़ता लिखता है तब उसके दिमाग में वो चीजें सेट हो जाती हैं, और जब वो अपना लिखने बैठता है तब उसे पता नहीं होता कहां से आई है। आई तो कहीं ना कहीं से है ही ना कोई मां के पेट से तो सीख के आया नहीं था कि सब पहले भव से आ गई होगी तो भी कोई बात नहीं है, फिर तो वहां भी कहीं से तो आई होगी ना, अनादि से निगोद से तो थी नहीं, निगोद से तो थी नहीं, और बाकी तो सब अपन आए ना सैनी पंचेंद्री हुए, तो जो कुछ भी अपने पास है वो सब देशना लब्धि से ही तो है ही, मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखा ही है ना। अब अपन तो आप पढ़ते हैं, जब कोई गुरुजी बनते हैं तो उन्हें गुरुजी कहते हैं, नहीं तो अपन पैदा होते ही ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ना छोटे, ये जितना सीखते हैं एक छह महीना में उतना आप छह साल में नहीं सीखते हो। क्यों कि उनको तो बेचारे को हर चीज सीखनी है, उन्हें तो कुछ नहीं देखा है, और उनके पास कोई आपके पास एक माध्यम है, एक भाषा है, जो भाषा में आपको कोई बताए तो आप उसे सुने समझें, उन्हें कोई पास कोई भाषा नहीं है, ये समझते नहीं है। वो मां भी बोले तो समझते नहीं है, फिर क्या बोल रही, वे बोल सकते नहीं है। तो इतने अल्प साधनों में जो कुछ भी उसे ज्ञान इकट्ठा करना है अपनी निरीक्षण शक्ति से ही करना है। अब आंखें खुल देख देख के देख लेता हूं, आप देखो आप जाओगे उसे देख, वो बहुत गहराई से आपको देखेगा, क्योंकि अब ये चार पांच चेहरे दिखते थे घर में, अब ये कोई नया आया है तो जरा उसको बहुत ध्यान से देखता है, जो अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ऐसा है ना, उसको भी अनुकूलता प्रतिकूलता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, कोई बिल्ली आए झपट्टा मारे वो देखता है कि जानवर है, ये है, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये मुझे हानि पहुंचाएगी तो डरता है। अब जैसे देखता है घर में एक गाय रहती है, हैं, और वो कोई हानि नहीं पहुंचाती है, और उसे वो देखता रहता है, गाय उसे देखती रहती है, हैं, कोई बिल्ली आए तो कभी कभी वो गाय वो बिल्ली को भगा देती है, बच्चे के पास नहीं आने देती है, तो वो उसकी समझ में सब आता है। वो समझ जाता है कि ये गाय जो है ये मेरी हितेशी है, ये मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये मेरी इसका बस चलेगा तो सुरक्षा करेगी, तो वो सुरक्षा करने वाले को और नुकसान पहुंचाने वाले को पहचानता है ना, तो बहुत स्टडी करता है वो, गहरे 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 गहरे। कहां पढ़ रहे थे अपन? जिस प्रकार अब ये इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अर्थात सत्ता गुण अपने अपने में है, जिसे हम अवान्तर सत्ता या स्वरूपास्तित्व भी कहते हैं। हो गया। अब जिस प्रकार भारतीय पढ़ो भाई, इसको कौन पढ़ेगा अच्छी तरीके से, इसमें भी आ जाए तुम्हारे स्पीकर में भी, इतनी देर लगाए पसंद नहीं है। जिस प्रकार भारतीय मुद्रा की इकाई रुपया है, ये तो मैं बता चुका हूं, पैसा का जो भेद है, पैसों का जो भेद है, ये रुपये के अंतर्गत ही है। इसी कारण 50 पैसे के सिक्के पर 1/2 रुपया लिखा जाता है, लिखा रहता है। उसी प्रकार स्वरूपास्तित्व या अवान्तर सत्ता जैन दर्शन की इकाई है। द्रव्य गुण पर्याय के जो भेद हैं वे इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब 1 रुपया है ना, तो 8 आना 4 आना ये इसके अंतर्गत हैं, और फिर 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 100 रुपया ये अलग अलग हैं, वे अलग अलग यूनिट है, समझ गए ना, तो वो महासत्ता की तरफ जाते हैं। जैसे हैं, जैसे अनंत गुण महासत्ता में है ना, ऐसे अनंत जीवों में वो द्रव्यों में महासत्ता है ना, ऐसे ये भी हो सकती है। और इसके अंतर्गत भेद है वो रुपया, वे 100 ही है, 100 पैसे अधिक से अधिक। महासत्ता का दूसरा नाम सादृश्य अस्तित्व भी है, जो अपने नाम से ही सूचित करता है कि यह सत्ता सभी में समानता के आधार पर ही मानी गई है। तात्पर्य यह है कि सभी द्रव्यों का अस्तित्व समान ही है, इस कारण सभी महासत्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सब बातें बता दी हैं पहले, नई कुछ बात नहीं है, लेकिन इसमें लिखना जरूरी था इसलिए लिख दिया है। यह एकता उपचरित असद्भूत व्यवहार में से है। देखो कौन सी एकता, बोलो है? समझे ना, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, असद्भूत माने संबंध है नहीं, उपचरित माने दूर का संबंध है, ऐसा संबंध है। तो उसमें उपचरित, देखो पर द्रव्यों के साथ जितने भी संबंध की बात आती है वो सब असद्भूत व्यवहार नए का विषय होती है। और उसमें जो उपचरित और अनुपचरित दो भेद हैं वो कर लो, करो नहीं करो तो नहीं करो, असद्भूत ही से कहने से काम चला सकते हैं हम, समझ रहे हैं ना। और अपने अंदर जितना भी व्यवहार प्रवर्तित होता है वो सब भेद रूप व्यवहार होता है। अपने एक वस्तु है ना, और उसी के टुकड़े कर करके हम उसको विस्तार करके समझते हैं। अब दोनों की उपयोगिता हो गई। अब मैं बोलता हूं तुम लोगों को, जो नए के विशेषज्ञ हो गए, कौन कौन मानता है अपने को नए का विशेषज्ञ है, कोई है तुम लोग? किसी में थोड़ा अहंकार ऐसा आया है? आना चाहिए, इसलिए कहता हूं। अहंकार आ गया तो बुरी बात है कि नहीं है? नहीं, मैं हूं नए चक्र को जानने वाला है, समझ रहे ना, कि मैं अथॉरिटी हूं इसकी, और किसी ना किसी चीज की अथॉरिटी बनना चाहिए अपन को, गौरव के साथ कह सकें, कोई भगवान भी सामने आ जाए ना तो मेरी तबियत शांति से, मैं इसकी अथॉरिटी बोल रहा हूं। जितने भी परद्रव्य के साथ के संबंध हैं वो इस असदगुरु भगवान से हैं। अब वो पांडे राजमल जी की बात करता हूं, उन्होंने पंचाध्यायी में इसे अस्वीकार कर दिया है? तो इन सारे संबंधों को कहां ले जाओगे है? इस सारे संबंधों को कहां ले जाओगे, माने कितनी बड़ी चीज की उन्होंने अपेक्षा की है। बहुत मेरे से कहते कि नहीं नहीं नहीं, बहुत लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, गुरुदेव भी बहुत प्रशंसा करते थे, मैं भी करता हूं, लेकिन जो बात गड़बड़ है वो है, बस कहता हूं। उसे भगवान को भी माफ नहीं किया जा सकता है, भगवान को भी एक दफे करेक्शन करना पड़ेगा यदि वो ऐसी बात कहेंगे। वो है ही नहीं, वो संबंध ही नहीं है। सादृश अस्तित्व को ही उड़ा दिया ना उनने, महासत्ता संग्रह नय को उड़ा दिया, संग्रह नय के विरुद्ध जो व्यवहार नय है उसको उड़ा दिया, नैगम नय को उड़ा दिया, कैसे चलेगा? उस वक्त तुमने ये नहीं सोचा होगा कि इसका इतना इफेक्ट जाएगा क्या? उनका दिमाग उधर नहीं गया, लेकिन बुद्धिमान तो बहुत थे। थोड़ा ही तकलीफ क्या हुई कि बनारसी दास ने आंख मीच के और उनका अनुकरण किया, तो नाटक समय सार में भी वो चीजें आ गई, और जगह भी वो चीजें आ गई, और फिर वो बहुतों के दिमाग में घुस गई। अब वहां सबसे कैसे निकालना बहुत कठिन है। वो इतनी गहराई से पढ़े, जितनी गहराई से अपन ने लिखा है कि पढ़ते पढ़ाते हैं ना, तो काम हो, नहीं तेरा काम नहीं हो सकता, समझ में आई ना? इतनी गहराई से कोई पढ़ता नहीं, इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता है कि वस्तु के स्वरूप के आधार पर निर्णय कर, नहीं नहीं उनका नाम बहुत बड़ा है, उनका नाम बहुत बड़ा है, अभी क्या करें है? बड़ा है तो उसे तल के खा जाओ, क्या करोगे? इससे बड़े का क्या करेंगे? परत क्या कहां चल रहे थे? अच्छा चलो, यह एकता उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से है। समझ में आ गई होगी सबकी, जितने नए चक्र पड़ा होगा उनकी में वे ही सब हैं, मतलब मेरे लिए बाकी तो अभी आए हैं नए नए। और स्वरूपास्तित्व के अंतर्गत द्रव्य गुण पर्याय के जो भेद किए जाते हैं वे सब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नये के अंतर्गत आते हैं। ये सब नयों को अच्छी तरह पढ़े बिना इस समय सार प्रवचन सार का अर्थ समझ में आ सकता है? तात्पर्य यह है कि सभी द्रव्यों की एकता असद्भूत है। समझ रहे इस भाषा, ये क्या है भाषा? उपचरित है, डबल डबल, एक तो है ही नहीं और है तो उपचार से बस खत्म। चाचा के चाचा के चाचा के चाचा को चाचा कह देना, ऐसा है बस है? क्या लगा? पढ़ो। तात्पर्य यह है कि सभी द्रव्यों की एकता असद्भूत है। क्यों समय हो गया क्या? क्यों घड़ी क्यों देख रहे? सभी द्रव्यों की एकता असद्भूत है, उपचरित है, और एक द्रव्य में भेद करना सद्भूत है, अनुपचरित है। इसलिए सादृश अस्तित्व के आधार पर अपनी सत्ता के समान अन्य सभी की सत्ता स्वीकार करते हुए अपना अपनापन अपने स्वरूपावस्तित्व में स्थापित करना ही उचित है। ठीक है, ये ऐसी मरम की बातें हैं कि इससे तुमने समझा तो सारा जैन धर्म समझ में आएगा, और मोक्ष मार्ग ऐसा दिखेगा तुमको, हाथ पे रखा हुआ आऊं ले जैसा, तो शंका नहीं होगी चित्त में क्या? तो सभी द्रव्यों की एकता उपचरित असद्भूत, और एक द्रव्य में भेद करना अनुपचरित सद्भूत क्यों और कैसे? सादृश अस्तित्व के आधार पर की गई विभिन्न द्रव्यों की एकता वास्तविक नहीं है, इसलिए वो असद्भूत हैं। और वे सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाही नहीं है, इसलिए उनमें परस्पर दूर का संबंध होने से उपचरित है। अब जैसे निगुदिया जीव हैं, वेनंद जीव एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं, लेकिन सभी द्रव्य तो नहीं है ना, कोई अलोकाकाश में है, कोई लोकाकाश में है, कोई सिद्ध सला में है। इसलिए एक वस्तु में होने वाले द्रव्यगुण पर्याय के भेद वास्तविक हैं, इसलिए सद्भूत हैं, और वे एक क्षेत्रावगाही हैं, इसलिए अनुपचरित हैं। उन्होंने कहा था सद्भूत अनुपचरित क्यों कहा, उपचरित क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो एक क्षेत्रावगाही हैं। वास्तविक बात यह है कि भिन्न भिन्न द्रव्यों में सदृशता के आधार पर जो एकता स्थापित की जाती है, उनमें परस्पर अत्यंता भाव होता है, और एक वस्तु के द्रव्य गुण पर्यायों में बीच अतद्भाव होता है। जहां अत्यंता भाव होता है वहां असद्भूत व्यवहार नहीं लगता है, और जहां अतद्भाव होता है वहां सद्भूत व्यवहार नहीं लगता है। अब ये सभी चीजें अपन ने मतलब अध्ययन करके गहराई निकाली है, और अपन ने अपनी भाषा दी है, इसी भाषा में आपको कहीं नहीं मिल जाए। अब हमें शास्त्र में बताओ साहब, ये शास्त्र ही है ना, कि ऐसी लिखी बताओ जैसी आपने लिखी। ऐसी लिखी होती तो हम लिखते ही काहे को, उतनी ऐसी स्पष्ट भाषा में नहीं लिखी है। वो जैसी स्पष्ट भाषा में है वैसी तुम्हें समझना पड़ेगी, है ना। उक्त संदर्भ में विशेष जानकारी करने के लिए लेखक की अन्य कृति परम्भा प्रकाशक नए चक्र के व्यवहार नए भेद प्रभेद संबंधी प्रकरण का स्वाध्याय करना चाहिए। विगत गाथा में अतद्भाव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, अब इस गाथा में यह बताते हैं कि सर्वथा अभाव का नाम अतद्भाव नहीं है। अब अगले 108 गाथा चलेंगी।